ناظرین السلام علیکم، میں لباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کی صورتحال، اسٹریٹجک معاہدہ مگر مشروط، اور طالبان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت پر افغان حکومت کی مخالفت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، افغانستان کے حالات اور پس پردہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ جو اسٹریٹجک معاہدہ کرنا چاہتا ہے افغان حکومت کے ساتھ، یہ کچھ نکات ہمارے آج کی گفتگو کے موضوعات میں شامل ہیں۔ اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
علی جعفر زیدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گرینڈ جلسہ ہوا تھا یعنی لوائے جرگے کا، جس میں اسٹریٹجک معاہدے کے بارے میں جائزہ لینے کی کوشش کی گئی تھی کہ کیا امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ مشروط طور پر اس اسٹریٹجک معاہدے کی اجازت دی گئی تھی، وہ بھی لوائے جرگہ کی طرف سے، اور اس کی توثیق تو افغانستان کی پارلیمنٹ کو کرنی ہے کہ اگر امریکہ یا نیٹو راتوں کو جو حملے کرتے ہیں رہائشی علاقوں پر یا دیگر جگہوں پر، وہ روک دیں تو پھر ہم اسٹریٹجک معاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس بات کی ضمانت دیں کہ وہ ایک محدود مدت کے لیے ہی اپنے اڈے بنائیں گے تو پھر ہم اسٹریٹجک معاہدہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ دو تین چار شرطیں تھیں اس میں۔ تو اس کے جواب میں نیٹو نے فوراً ہی کہا کہ ہم راتوں کے حملے تو نہیں روکیں گے، اور دوسری طرف سے دباؤ ہے کہ اسٹریٹجک معاہدہ افغان حکومت کرے۔ تو کیا ہوگا، آیا رات کے حملے رکیں گے یا اسٹریٹجک معاہدہ غیر مشروط ہو جائے گا افغان حکومت کے ساتھ امریکہ کا؟
جی، یہ معاہدہ تو کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات ضرور سامنے آئی ہے کہ افغانستان اور امریکی حکام کے درمیان ایک طرح کا کھچاؤ اور تناؤ ہے، اور یہ کھچاؤ تناؤ اور بھی اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب کہ امریکہ نے جرمنی اور قطر کی مدد سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، اور افغانستان حکومت کے کو تاریکی میں رکھا، اور اس کے جواب میں افغانستان کی حکومت نے اپنے سفیر کو دوحہ سے واپس بلا لیا۔ یہ غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو یہ ٹینشن تو ڈیولپ ہو رہی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ معاملات اور حالات اس کی شرائط پر طے ہوں، افغان حکومت اپنا مسل بھی دکھانا چاہتی ہے، اور نیٹو افواج اور امریکی افواج کی واپسی کے بعد یہ بھی یقینی بنانے کی افغانستان حکومت کوشش کرے گی کہ اس حکومت پر ان کا کنٹرول رہے اور اس علاقے میں امن رہے۔ لیکن کیا امریکہ واقعی اس علاقے میں، افغانستان میں امن چاہتا ہے؟ اور یہ جو قطر میں دفتر کھولنے کی بات ہوئی ہے، جو کہ قطر میں دفتر کھولنے کی وجہ نہ افغان حکومت کو سمجھ میں آئی، نہ ہی پاکستان جو کہ بہت بڑا فریق ہے اس کو سمجھ میں آئی ہے، اور طالبان کے ساتھ امریکہ براہ راست ایک ڈائیلاگ کرنا چاہ رہا ہے، افغانستان کی حکومت کے ناراضگی کے باوجود، تو لگتا یہ ہے کہ یہ جرگہ کی جو بھی تحفظات ہیں یا ان کے مطالبات ہیں، और ये स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है उसकी शक्ल अभी तो कुछ वाजह नहीं नज़र आती, लेकिन एक बात यकीनी है कि अमेरिका वहाँ पर अपना होल्ड रखना चाहता है। 2014 में अपनी अफवाज की वापसी के बाद भी अब ये बहस पेंटागन में छिड़ी हुई है कि वहाँ पर वो कितने अपने फौजी रखेंगे या नहीं रखेंगे, और नंबर्स पर डिस्कशन हो रही है। सुनाया गया है कि 10,000 से लेकर और 30,000 तक की यूएस जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको वहाँ 2014 के बाद भी रखा जाएगा
जी।
तो अफगानिस्तान में जो मुस्तकिल अजाइम हैं अमेरिका के वो तो नज़र आते हैं, और 2014 में जो उनकी वापसी का ऐलान है उसके पीछे भी वो अफगानिस्तान को अलहदा से अलग से छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पर अपना अमल दखल चाहते हैं, अपना अड्डा चाहते हैं, और अड्डे उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर तामीर किए हैं। तो उस रीजन में उनके जो मफादात हैं अमेरिका उसको अपने अहदाफ जो हैं उसको सामने रखते हुए वहाँ से आसानी से निकलना नहीं चाहेगा
जी। बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं कमर आगा साहब, स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर। कमर आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
हाँ कमर आगा साहब, बात हो रही है अफगानिस्तान के तनाजुर में अमेरिका और अफगान हुकूमत के दरमियान स्ट्रेटेजिक माहदे की, उस पर लोया जरगा भी बुलाया गया था, बातचीत भी हो गई थी, और हामिद करजई ने तमाम कबायल अशायर और ग्रोहों के ख्यालात और नजरियात भी मालूम करने की कोशिश की थी कि आया ये स्ट्रेटेजिक माहदा हो या ना हो अमरीका के साथ। लेकिन सब ने इस बात पर इतफाक किया कि अगर माहदा अव्वल तो नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो मशरूत होना चाहिए, और सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि जो ये रात की तारीकी में जहां चाहते हैं और जिस वक्त चाहते हैं हमला कर देते हैं, फौरी तौर पर वो हमले बंद होने चाहिए जिसमें नियत थे मासूम बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं। और दूसरी बात, अमेरिका को ये कैद करना होगा कि ये जो मुस्तकिल अड्डे बनाए जाएंगे वो कितनी मुद्दत के लिए होंगे, और अगर होंगे तो बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए होंगे। लेकिन उसके फौरन ही बाद देखा गया कि नेटो और अमेरिका ने इस शर्त को मुस्तद कर दिया कि हम रातों को हमले नहीं करें। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए कि रातों के हमले जारी रखे जाएं। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि क्या किसी मरहले पर अफगान हुकूमत अपनी इस शर्त से या मौके से पसपाई अख्तियार कर लेगी और अमरीका और नेटो को अख्तियार दे देगी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत मुश्किल है। जब तक अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं वो जो जी चाहे शर्तें रख सकते हैं, वो जिस तरीके से चाहे उसको मसले को आगे बढ़ा सकते हैं। 1,30,000 के करीब उनके वहाँ पे फौजी हैं वेस्टर्न नेशंस की, ये बहुत बड़ी तादाद है। गवर्नमेंट के पास खुद मुख्तारी नहीं रह जाती ऐसे, खासतौर से अफगानिस्तान इस वक्त हर चीज़ पर उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें जो शर्तें उन्होंने रखी उसका पहले वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने उसको उसके खिलाफ बोले, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने उनको मानना पड़ा। ये एक दुश्वारी अफगान गवर्नमेंट के साथ शुरू से है, और जब तक ये रूप से रहेंगे मैं समझता हूँ ये परेशानी रहेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी अफगानी नहीं चाहता कि उसके यहाँ ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं वो चले। इन हमलों से ज़्यादातर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, और इस बात के ऊपर खुद अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देश और वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्हीं ने भी इस तरफ इशारा किया और उन्हीं ने भी इसको कंडेम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये ड्रोन जो है उनकी वहाँ पे कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, उसके खिलाफ हैं लोग, और लोग चाहते हैं बंद हो, ये बेगुनाह लोगों के खून नाहक जा रहे हैं। और तीसरी तरफ ये भी बात है कि उस पूरे रीजन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और उससे कोई हासिल या उसूल नहीं हो रहा। ये एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसमें कोई नहीं जीत रहा। अमेरिकन अगर 10 साल भी रहेंगे मैं समझता हूँ तब भी वो इस जंग को नहीं जीत पाएंगे, और ना ही दूसरी तरफ जो मिलिटेंट है उनको भी कोई विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन हो गई है जैसी अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन का आखिरी दौर था और गोर्बाचोव ने जब विड्रॉवल का प्लान बनाया था उसी वजह से उन्हीं ने प्लान बनाया था, उनको इस बात का एहसास हो गया था कि अगले 10 साल तक भी अगर वो जंग लड़ेंगे तो नहीं जीत पाऊंगा। मैं समझता हूं बिल्कुल उसी तरह से इस वक्त अमेरिका की भी पोजीशन हो गई है और अमेरिका जितने साल रहेगा ये जंग वहां पे नहीं जीत पाएगा बल्कि इससे बर्बादी और पूरे खत्ते पर बुरा असर पड़ेगा।
जी मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। ज़री साहब, अभी आपने तालिबान के साथ अमरीका के खुफिया मुज़ाकरात की बात की, जर्मनी और दोहा में हुए और 6 दौर के मुज़ाकरात हो चुके और अमरीका ने यहां तक कहा है कि अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो हम तालिबान को तस्लीम भी कर लेंगे और उसके ग्वांतानामो बे में जो कैदी उनको रिहा भी कर देंगे। तो अगर अमरीका को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने ही थे और तस्लीम करने ही थे तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लश्कर कशी क्यों की गई और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट क्यों बजाई गई और साथ ही लाखों की तादाद में लोगों का कत्ल खून क्यों किया गया?
जी, ये तालिबान की हुकूमत के खात्मे के लिए तो अमेरिका वहाँ नहीं गया था, उसके अहदाफ कुछ और थे और वो अहदाफ वो हासिल अभी तक नहीं कर पाए। अब ये जो तालिबान के साथ बराह रास्त उन्होंने गुफ्तगू शुरू की है, असल में तीन बड़े फरीक हैं इस सारे मामले में, तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अमेरिका की कोशिश ये नज़र आती है कि वो तालिबान के साथ अलहदा मुज़ाकरात करें, अफगानिस्तान की हुकूमत पर उनका अपना एक असर और दबाव मौजूद है, पाकिस्तान के साथ अब जो एक खिंचाव तनाव पैदा हुआ है उससे एक सूरत हाल कुछ और तब्दील हो गई है। तो इस तीनों सूरतों में अफगानिस्तान के तालिबान जो कि ये समझते हैं या दुनिया को बताते हैं कि इनका अलकायदा के साथ ताल्लुक है, हालांकि अलकायदा के टोटल मेंबर्स जो इनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक गालबन 6 महीने पहले बताई गई थी कि वहाँ सिर्फ 200 अलकायदा के मेंबर हैं और ये यकीनन इन्होंने खुद ही पैदा किए थे एक वक्त में, तो वो तो एक ऐसी बोगी है जिसको सामने इन्होंने रखा हुआ था, अभी भी रखा हुआ है और शर्त तालिबान के साथ ये रख रहे हैं कि वो अपना ताल्लुक अलकायदा से छोड़ देंगे और इस वजह से फिर उनके साथ ताल्लुकात भी इस्तवार हो जाएंगे और ग्वांतानामो बे से गालबन वो 5 अफगानी जो हैं उनको वो रिहा करने वाले हैं और वो अफगान हुकूमत का कहना ये है कि वो हमें हमारे मुल्क में आने चाहिए चूंकि हमारे यहाँ अपना एक कानून है और किसी तीसरे कंट्री में उनको भेजने का कोई जवाब नहीं बनता, जबकि अमेरिका उनको कतर जो नया ऑफिस वहाँ तालिबान का अमेरिका और जर्मनी और कतर की मदद से बनाया जा रहा है वो ग्वांतानामो बे के जो कैदी हैं उनको वहाँ वो देना चाहते हैं जबकि अफगान हुकूमत इस बात पर खुश नहीं है। तो ये जो खिंचाव तनाव है ये अभी लगता है कि चलेगा और ये गर्द कहाँ जाकर बैठेगी, किसके हक में बैठेगी, इसको अभी समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जाहिर है अमेरिका चाहेगा उसके हक में ये मामला तय हो, अफगान हुकूमत अपने यहाँ इसको अपने हक में तय करना चाहेगी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान की इस सूरत मुकम्मल सूरत हाल में, तो वो भी चाहेगा कि वहाँ पर जो भी अमन का मामला या फ्यूचर में जो सेटलमेंट होना जा रहा है उसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल हो और पाकिस्तान के रोल के बगैर ना वहाँ कोई माहदा काबिल अमल हो सकता है और ना ही वहाँ कोई अमन उस तरह से कायम हो सकता है।
ये बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा। चलते हैं पाकिस्तान जहाँ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज दानिश्वर और सियासी उमूर के माहिर जनाब प्रोफेसर फारूक हसना साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
हसना साहब, इत्तलात ये है कि 6 दौर के मुज़ाकरात अंजाम पा चुके हैं अमरीका और तालिबान के दरमियान और मुल्ला उमर के नुमाइंदों के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं अमरीका के, ایک طرف تو امریکہ خود طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ طالبان کے خلاف کارروائی کریں، تو کیا امریکہ نے واضح طور پر طالبان کی دو تین قسمیں کر دی ہیں، اچھے برے؟
اس میں بات یہ ہے کہ طالبان تو جو افغانستان میں موجود ہیں ان کی ایک سچویشن ہے، ان کا ایک ایجنڈا بھی مختلف ہے، اور ان کے جو وہاں پہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا یا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے طریقے بھی اور ہیں. اب دوسری طرف پاکستانی طالبان ہیں، جس کو پاکستان کے طالبان کہتے ہیں، جو قبائلی ہیں پاکستان کے سائز میں، اس میں خاص طور پر حقانی گروپ بھی ہیں اور دوسرے گروپس بھی موجود ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو افغانستان کی طرف کے طالبان ہیں ان سے تو اب یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ امریکہ کی بات چیت کسی حد تک پیش رفت اس میں ہوئی ہے، وہ آگے اس میں بڑھے ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے ابھی بھی انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی وہ نہیں آئے بیچ میں، انڈائریکٹلی وہ ان سے ڈیل کر رہے ہیں. اس میں قطر کا جو ابھی بھی کہا گیا، قطر میں جو ان کو قائم کیا گیا، دفتر قائم کیا گیا، افغانستان نے پروٹیسٹ پر کیا لیکن اب کرزئی صاحب بھی اس کو مانتے ہیں. ان کی بات چیت مختلف گروہوں کے ساتھ جاری تھی، مشکل ان کو پیش آ رہی تھی جو پاکستان کی طرف کے پاہل ہیں، طالبان کہہ لیجیے جو بھی ان کو نام دے دیجیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی ان کو قائل کر سکتا ہے، یا پاکستان کہ وہ کسی حد تک زیر اثر ہیں، یا پاکستان ان سے اپنی بات منوا سکتا ہے. اور امریکہ کا اس وقت جو یہ تو ایک پیسز ہیں، ٹکڑے ہیں، لیکن جو اصل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے افغانستان سے باہر نکلا جائے، اور اس کے لیے ایک مناسب قسم کی حکومت وہاں پہ قائم کی جائے، نیشنل قومی حکومت، جس میں تقریباً تمام فریق کی اس میں شامل ہوں، کرزئی اس کے ہیڈ ہوں، سربراہ ہوں، اور پھر امریکہ وہاں سے نکلے افغانستان سے مختلف وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی جس طرح وہ چاہ رہے تھے، اکنامک پریشر بہت زیادہ ہے اور اس میں پلجتے چلے جا رہے ہیں، امریکہ کی رائے عام بھی اس کے بہت خلاف ہے. تو اس لیے اس میں اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ ظاہر لگتا ہے کہ طالبان سے بات کی تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اصل دیکھیے معاملہ وہاں پہ ایک اور بھی ہے، اس وقت افغانستان کی حکومت میں زیادہ تر ازبیک ہیں، ترکمان ہیں اور تاجک ہیں، وہ ہی کرزئی حکومت کے ارد گرد چھائے ہوئے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو طالبان کس حد تک ایک بات مانتے ہیں ان کی، ریکنسیلیشن کرتے ہیں یا نیشنل گورنمنٹ، یا وہ کرزئی کی بات مانتے ہیں، اگر وہ امریکہ کی بھی بات مان کے تو پھر کرزئی کو وہ کس حد تک قبول کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ دوسرے ایتھنک گروپ ہیں افغانستان کے، وہ کس حد تک جو ان کو وہ قوت ملی ہوئی ہے افغانستان میں، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. کیونکہ وہ ٹھیک ہے امریکہ نے ان کو اسپانسر کیا، سب کچھ کیا، لیکن اب ان کی اپنی آئیڈینٹی بھی ہے، ان کا اپنا بھی وہاں پہ ایک ایتھنک زور ہے اس ملک میں، تو کیا وہ اقتدار کو چھوڑ دیں گے اتنے آرام سے، اور جو پشتون ایلیمنٹ ہے یا طالبان ہے یا دوسرے لفظوں میں، ان کو وہ آنے دیں گے حکومت میں، اور اگر آنے بھی دیں گے تو کس حد تک آنے دیں گے؟ اس لیے بہت پیچیدہ گیم ہے. لیکن امریکہ کا
جی، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں فاروق حسن صاحب. زجی صاحب، آپ سے میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی ماضی میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی تو طالبان نے دو ٹوک لفظوں میں انکار کیا، اور امریکہ کے ساتھ طالبان نے مذاکرات کا مسترد کیا اور کہا کہ جب تک افغانستان میں یہ قابض ہوں اس وقت تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، قابض قوتوں کے ساتھ مذاکرات غیر ممکن، اس طرح کے بیانات آتے رہے. اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ طالبان ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار بھی ہو گئے اور مذاکرات انجام بھی دینے، چھ دور کے اطلاعات کے مطابق مذاکرات انجام بھی پا چکے؟
میرا خیال ہے یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں افغانستان کے طالبان کو بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب تک جو ان کے سٹینڈ تھے یا ان کا جو مطالبات رہے ہیں وہ اس کو حاصل اس طرح نہیں کر پائے، اور 2014 میں اگر واقعی امریکہ کی افواج اور مغربی افواج کی واپسی وہاں سے ہونی ہے تو پھر افغانستان के अंदरूनी मामलात में तालिबान अलग से बैठकर नहीं रह सकते। चुनाचे उसमें शायद वो 2014 का एलिमेंट ज़्यादा अहम है, जिसमें वो ये समझते हैं कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। दूसरा एक और एलिमेंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त वहाँ अफगानिस्तान के अंदर, वो ये है कि जो 30,000 लोकल पुलिस, अफगान लोकल पुलिस जिसको ट्रेन किया गया है, उसके बेशुमार करप्शन के, रेप के और क्रिमिनल एक्टिविटी जो उन्होंने की है और कर रहे हैं, वो भी मंजरे आम पर आई है और उनका अमरीकी फौजियों के साथ एक गहरा रिश्ता और ताल्लुक है
जी।
एक तीसरा जो फैक्टर है वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स की शक्ल में अमरीका के जो इस वक्त मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वो, और अगली जो इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट एक वक्त में आई थी उसके मुताबिक उन्होंने 1:1 इराक के लिए रखा था और 1.5 अफगानिस्तान के लिए रखा था रेशो, कि अगर वहाँ से 1,00,000 फौजी फर्ज कीजिए वापस आता है तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स को वहाँ पर भेजा जाएगा, और जो कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में उस तरह तो वर्दी में नज़र नहीं आएंगे लेकिन अमली तौर पर वहाँ पर वो मौजूद होंगे और सिक्योरिटी के मामलात में वो एडवाइजरी कैपेसिटी से लेकर और मैदान तक वो अपने असर और रसूख और कंट्रोल रखेंगे। तो इस तमाम सूरत में तालिबान कहाँ स्टैंड करते हैं, वो भी वॉरलॉर्ड्स बने हुए हैं, उन्हें भी माल चाहिए, उन्हें भी वहाँ की जो करप्शन का एलिमेंट है उसके अंदर भी हिस्सा चाहिए, हुकूमत में भी हिस्सा चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस 7-8 साल 9 साल के अरसे में गालबन वो भी अपना शेयर लेना चाहते हैं, हुकूमत में भी, माल और दौलत में भी, और इस इलाके में अपनी एक खोई हुई जो उनकी हुकूमत रही थी उसका कुछ हिस्सा भी शायद वो लेना चाहते हैं। चुनाचे मुज़ाकरात में उनका आना गैर मामूली नहीं है। अलबत्ता अमरीका का उनके साथ अफगानिस्तान हुकूमत की बैक पर ताल्लुकात को बढ़ाना और उसको तारीकी में रख कर तालिबान के साथ निगोशिएशन करना, ये एक ऐसी बात है जो कि करज़ई को शायद काबिल कबूल नहीं होगी और शायद पाकिस्तान को भी काबिल कबूल ना हो
जी। कमर आगा साहब, तालिबान ने अगरचे अपने सख्त गिर रवैये की वजह से अफगान आवाम को माजी में भी बदज़न कर रखा था जब उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा था और अपनी हुकूमत बना ली थी, और जो उनके रवैये थे, जो उनके नज़रियात थे, जो ख्यालात थे, जाहिर है कि बड़ी तादाद में अफगान ऐसे थे जो उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर उनकी थोड़ी बहुत रही सही शनाख्त थी तो वो अमरीकी मुखालफत पर मबनी थी और काबिज क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ वो नारा लगाते थे कि हम उनके ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं और अफगानिस्तान से उनको निकाल बाहर करने के लिए हम मुज़ाहमत कर रहे हैं। तो अब जब उन्होंने अमरीका के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए, वो भी खुफिया और पस पर्दा, तो क्या समझते हैं कि अफगान आवाम में उनकी जो रही सही मकबूलियत थी वो भी बाकी बचेगी?
मैं समझता हूँ नहीं है। इस बीच जितने भी सर्वे हुए हैं अफगानिस्तान में, ये ज़्यादातर और तलब ये है कि वेस्टर्न देशों में या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ ने कंडक्ट किए थे, उसमें मजॉरिटी अक्सरियत लोगों की यही थी, वो ये कह रही थी कि उसको तालिबान दोबारा पावर में नहीं चाहिए, तालिबान का दोबारा वापसी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ ये है, इस वक्त टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालिबान को लाने का एक मकसद ये भी है कि ये बहुत एंटी पर्शियन ग्रुप है, इस वजह से भी उसका एंटी ईरानियन ग्रुप है, और इसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कुछ देश हैं, खासतौर से पर्शियन गल्फ में जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि तालिबान वहाँ पर लाए जाएँ, और ये पार्ट है ईरान के कंटेनमेंट का, का भी प्लान इसमें उनके झलक नज़र आती है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका वहाँ पे एक काफ़ी मिसाइल्स और कुछ और एयर स्ट्रिप्स भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी फंडिंग इन्हीं देशों से आने की उम्मीद है जो कि ईरान के खिलाफ यूज किए जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि तालिबान की हुकूमत बहुत भी अगर बनती है तो वो अमेरिकन पे डिपेंडेंस होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपने इस मौकफ पे कामयाब हो पाएगा। उसकी कई वजह है, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि न तो वहां की जनता को ये पसंद आएंगे, दूसरी बात ये कि नॉर्दर्न अलायंस इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर अफगानिस्तान का वर्चुअली पार्टीशन हो जाएगा अगर ऐसा हुआ, इसलिए कि ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और दूसरे ट्राइब्स जो है, दूसरे जो इथनिक ग्रुप्स हैं, वो इस दफ़े कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तीसरी बात गौरतलब ये भी है कि तालिबान बहुत डिस्परेट हो चुके हैं, वो किसी भी सूरत से ताकत में आना चाहते हैं, किसी भी शेयर पे कोई भी मुहैदा करने पे तैयार हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरफ तो वो अमेरिका से बात कर रहे हैं और जो अमेरिका की शर्तें हैं उसमें पहली शर्त ये है कि वो अलकायदा से अपने लिंक तोड़ दें, दूसरी शर्त उनकी ये है कि वो उसमें बुनियादी चेंज लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें और वहाँ पे जो उनके पास वेपन है उसको सरेंडर कर दें, वायलेंस बंद करें, वीमेन राइट्स की रिस्पेक्ट करें, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करें, वो सारी बातें हैं। ये इन जो बुनियादी चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, इसके मतलब ये है कि वो अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन में बदलाव लाएं। मैं नहीं समझता कि अफगान कभी भी डेमोक्रेसी या सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप को एक्सेप्ट करेंगे या कोई भी चीज़ करेंगे, उनका एक प्लॉय है, इसके जरिए वो पावर में आना चाहते हैं। हाँ, एक दो एक चीज़ें ज़रूर कॉमन है कि उनकी दुश्मनी ईरान से या पर्शियन से, माइनॉरिटीज से पुरानी है उसमें, और दूसरी बात ये कि उनका हिस्ट्री रही है कि उन्होंने इस तरह के बहुत से एग्रीमेंट किए और बाद में मुकर गए। वो कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं लाएंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान दोबारा से क्योस एंड एनार्की की तरफ डिसेंट कर जाएगा और ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, नॉट ओन ये अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, खासतौर से हिंदुस्तान इससे बहुत डरा हुआ नजर आता है, यहाँ के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तीसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त जितने भी अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हैं या जो भी लोग हैं, वो उनका मानना यह है कि इस वक्त ये इस्लामिक पावर्स जो राइज कर रही हैं, अलहदा या दूसरे इस्लामिक ग्रुप्स जितने भी हैं, उनके जरिए वो सब पावर में इजिप्ट में ब्रदरहुड या दूसरी जगहों पे आ रहे हैं, उसमें अफगानिस्तान को लाके, अफगानिस्तान में अगर तालिबान उसमें आते हैं शायद उससे कुछ उनको मदद मिले। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को बहुत दोबारा से बहुत नुकसान होगा इसके लाने से और पूरे खुत्ते को भी बहुत बुरी हालत में आ जाएगा, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, खासतौर से हिंदुस्तान भी इससे बहुत अफेक्टेड रहेगा। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अमेरिका कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।
जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसना साहब। अभी आपने तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान का जिक्र किया कि गोया अफगानिस्तान के तालिबान कुछ और हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं यानी तालिबानी वो कुछ और हैं, लेकिन जब हक्कानी नेटवर्क की बात की जाती है और अमेरिका पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क पर दबाव डालने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हक्कानी नेटवर्क वो है जिसका ज़्यादा असर व रसूख खुद अफगानिस्तान में है, और यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पूरे अफगानिस्तान में न सही तो बेशतर इलाकों में, ख़ासतौर पर जुनूबी इलाकों में उनका गहरा असर व रसूख है, और हक्कानी नेटवर्क और अफगानिस्तान के तालिबान दोनों ये कह चुके हैं कि हम दोनों एक ही हैं, किसी भी एतबार से जुदा नहीं है। और क्या अमेरिका को या दूसरे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि इतना ही उनका असर रसूख है यानी हक्कानी नेटवर्क का, कि अफगानिस्तान में नेटो के जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे वो रोड टैक्स वसूल करते हैं और ये लोग मजबूर होते हैं हक्कानी नेटवर्क को रोड टैक्स देने के लिए, तो फिर ये कौन से मुज़ाकरात हैं या कौन से तालिबान हैं जिनसे अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है और कौन से तालिबान ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई के लिए वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, जबकि खुद ये तालिबान कह रहे हैं कि हम अलग नहीं हैं, एक हैं।
जी कहीं जो मर्जी, लेकिन हम सारे जानते हैं कि जो कबायली इलाके हैं वहां पे हर कबीले का अपना इंटरेस्ट है और वो अपना इंटरेस्ट ही परसू करते हैं, और इसी तरह की अब से नहीं सदियों से ये आपस में इख्तलाफ भी रहे हैं, बहुत से मामलात में कहीं ये यकजा भी हो जाते हैं लेकिन कहीं नहीं भी होते, बहुत सी जगहों पर नहीं भी होते, और यकजा ही उस वक्त होते हैं जब बाहर से कोई बैरूनी कुवत आती है इस इलाके में, जैसे कि सोवियत आए तो उसके बाद सोवियत से बाहर तो हमने तो ये सुना भी नहीं कि कोई एथनिक ग्रुप भी अफगानिस्तान में होता है, जो सारे अफगानिस्तान के शहरियों के तौर पर उन्होंने लड़ाई की उनके खिलाफ। अब इसी तरह अमेरिका की मुदाखलत हुई तो इसमें भी जो अफगान नेशनलिज्म है वो आगे आ जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तान की साइड में पश्तून एलिमेंट भी उसमें शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान को ये ओन करते हैं पाकिस्तानी पश्तून भी, वो समझते हैं कि उनका ओरिजिन वहाँ है, उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका एथनिक जो सेटअप है वो उनसे मिलता जुलता है, तो लेकिन जो मफादात हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसलिए आप देखिए कि जब तालिबान की भी हुकूमत रही अफगानिस्तान में तो उनका बहुत कम ताल्लुक था पाकिस्तान के पश्तूनों के साथ या कबायल के साथ, बल्कि इनका ज्यादा ताल्लुक था अरबी बोलने वाले जो लोग हैं, ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के जो लोग थे उनके साथ दोस्ती उनकी बहुत ज्यादा थी, ना कि पाकिस्तान के तरफ जो कबायल हैं वो। यहाँ जो इनके ताल्लुकात बने हैं 2002 के बाद, जबकि ये भाग के आए हैं इस इलाके में, साउथ वजीरिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान में आए हैं और पनाह इन्होंने लिए छुपे हैं, तो फिर अमरीका ने जब बमबारी की उनके पीछे आकर और 2002 में खास तौर पर, तो ये थे इनके ये नाराज हुए, पाकिस्तान से भी नाराज हुए, अमेरिका से भी बहुत नाराज हुए, तो वहां से फिर चली है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनके कोई लिंक्स कोई इतने पायदार लिंक्स हैं और इतने कोई पुराने लिंक्स हैं कि ये जो भी अफगानी अफगानिस्तान के तालिबान करेंगे वो भी ये करेंगे। तो बैतुल्ला मसूद ने चूंकि पाकिस्तान की फौज से नाराज हुआ मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर, तो उसने फिर ये तंजीम बनाई जिसका नाम उसने पाकिस्तानी तालिबान दिया, हालांकि ये उसकी नकल थी, ये उसका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है। तो ज्यादा हकानी को उसका ताल्लुक है उनका, चूंकि वहां उनके लोग मारे गए, अमेरिका ने बमबारी की, नेटो फोर्सेज ने बमबारी की, तो वो उनकी शिकायतें उनके साथ बहुत है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी कोई इख्तलाफ नहीं है। बल्कि बैतुल्ला मसूद के खिलाफ जब एक्शन लिया वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौजों फौज ने, तो हकानी ग्रुप ने पाकिस्तान की फौज की ही तरफदारी की थी और बैतुल्ला मसूद के खिलाफ लड़े तो अगर नहीं, लेकिन उन्होंने उनको पनाह भी नहीं दी, बल्कि उनको कहा था कि अगर आप हमारे इलाके में आएंगे तो हम आपको नहीं आने देंगे पाकिस्तानी फौज के हमले से भाग कर। तो इसके इख्तलाफ तो मुल्ला नजीर हैं दूसरे, वो भी बैतुल्ला मसूद के बहुत खिलाफ थे, तो इसलिए इनके अंदर भी काफी इख्तलाफात हैं। लेकिन असल बात यह है कि अफगानिस्तान में अगर एक कौम कबूल हुकूमत होनी है तो हम चाहे पसंद करें या ना पसंद करें, हम बहुत ना पसंद करते हैं तालिबान की जो हरकतें रही हैं जब वो हुकूमत कर रहे थे, जिस तरह का उनका नजरिया है मजहबी भी और दूसरे मामलात में भी, वो तो कोई भी पसंद उसको नहीं करेगा, हम पाकिस्तान में तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत अफगानिस्तान की ये है कि वो जब तक पश्तून एलिमेंट उसमें शामिल नहीं होगा, जो कि बदकिस्मती से या जो भी अच्छा हुआ तारीख का, ये तालिबान ही है सारे और नॉन पश्तून तालिबान नहीं है। तो अगर तो अपना एजेंडा वो तब्दील नहीं करते और वही एक्सट्रीमिज्म वो रखते हैं तो अमरीका को उससे कोई सरोकार नहीं है। देखिए अमरीका उनके उस वक्त खिलाफ हुआ जब उसामा बिन लादेन की तंजीम ने हमला किया 9/11 में, और ये तालिबान को तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, तो अमेरिका ने जब कहा इनको कि आप हमारे सुपुर्द करें उसामा बिन लादेन को, उन्होंने नहीं किया तो फिर अमेरिका इनके खिलाफ हुआ। उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी हमें सबको पता है, जारी थी, खवातीन के साथ क्या वो सलूक करते थे हम सबको पता है, क्या करते थे अमरीका को भी पता था, लेकिन अमरीका ने कभी भी इनको खत्म नहीं करना था अगर 9/11 ना होता। तो इसलिए उनको सिर्फ सरोकार है कि अलकायदा, चूंकि अलकायदा बैन अवी एक तंजीम है जो अमेरिका के मफादात पे हमले करती रही है माजी में मुख्तलिफ इलाकों पे जाकर।
लेकिन फारूक हसन साहब, अगर फारूक हसन साहब मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आप ही से पूछना चाहूंगा, अगर उनको तालिबान से सरोकार नहीं था तो हुकूमत पाकिस्तान पर क्वेटा शूरा के खिलाफ कार्रवाई करने का क्यों इतना दबाव पड़ा?
इसलिए वो ये समझते हैं कि ये कोटा शूरा में कुछ इनके जो रहनुमा हैं वो आके पनाह लेते हैं, और इसलिए असल देखिए बात,
देखिए कोटा शूरा में जो मेन किरदार है, एक तरफ कोटा शूरा में जो मेन शख्सियत है वो मुल्ला उमर की है, और जाहिर है कोटा शूरा के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब
लेकिन आज ही देखिए आज ही के अखबार में आया कि मुल्ला उमर को जो वांटेड लिस्ट है वहां से हटा दिया गया है। इसका देखिए इसका साफ मतलब ये है कि इनके मुजाकर
बज़ाहिर हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया, मैं साथ ही कोशिश करेंगे कि फारूक हसन साहब से दोबारा रब्ता हो। जैदी साहब लंदन में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं طالبان کے ساتھ امریکہ کے قطر میں اور جرمنی میں، تو کیا حکومت پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا آپ کے خیال میں؟
میں نہیں سمجھتا، اور پاکستان اس صورتحال پہ یقیناً، میرے پاس اس کی کوئی ایویڈنس یا ڈیٹیلز تو نہیں ہیں، لیکن سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کو باہر رکھ کر اور پوشیدہ انداز سے یہ مذاکرات جو جاری کیے جا رہے ہیں اس وقت، اس میں پاکستان کو باہر رکھ کر یہ مذاکرات طالبان کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی عملی شکل نہیں بنے گی۔ پاکستان بھی یہ جانتا ہے، طالبان بھی جانتے ہیں، امریکہ بھی جانتا ہے، تو پاکستان نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ایسی سیٹلمنٹ افغانستان میں ہو، چاہے وہ طالبان کے ساتھ یا کرزئی کے ساتھ، ان دونوں کو ملا کر ہو، جس میں پاکستان کو باہر رکھا جائے۔ اور یہ ماضی میں بھی اور وہاں کی جو تاریخ اور وہاں کے جو جغرافیکل فیکٹرز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پاکستان کا جو اپنا انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ تینوں کے اتحاد یا اشتراک کے ساتھ ہی وہاں پر کوئی عملی شکل، قابل عمل کوئی ایسا امن قائم ہونے کی شکل بن سکتی ہے، کوئی ایسی حکومت چل سکتی ہے، بن سکتی ہے جو ان تینوں کے مشترکہ رضامندی کے ساتھ ہو، ورنہ وہاں صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی وہاں پر ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتا ہے، کیا واقعی امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس ریجن میں امن قائم ہو جائے اور جو حکومتیں ہیں وہ کمزور، یا کنٹریز جیسے پاکستان اس وقت ایک انسٹیبل اکانومی ہے، انسٹیبل کنٹری ہے، افغانستان ایک انسٹیبل کنٹری ہے، کمزور ہو چکا ہوا ہے، تو کیا امریکہ واقعی چاہے گا کہ یہ ممالک مضبوط ہوں؟ ایک صورت میں جیسے کہ ایک اشارہ ہمارے دہلی کے مبصر نے کیا، وہ بہت وزندار بات ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ طالبان میں یقیناً ایران کے حوالے سے ہے۔ طالبان کے بارے میں ملا عمر کا جو گروپ ہے اس کو سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی عرب اور سلفیز فقہ اور اس کا ان کا ایک طرح کا تعلق واسطہ ہے، بلکہ انہوں نے یعنی افغان حکومت نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب یا ترکی میں اس کو ہونا چاہیے تھا، ان کا آفس یہ قطر میں کیوں ہے؟ قطر میں اس لیے ہے کہ قطر اس وقت سبسرویئنٹ ہے اور بہت بڑی وفاداری کے ساتھ سعودی عرب اور امریکہ کے مفادات کا مڈل ایسٹ میں تحفظ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سیریا کی بات ہو یا کہیں بھی مڈل ایسٹ کے اندر مذاکرات کی بات ہو، قطر سب سے آگے آگے ہوتا ہے۔ چنانچہ اب قطر امریکہ کی ایک فرنٹ اسپوکس مین کہہ لیں یا فرنٹ لائن سٹیٹ کہہ لیں یہ ہے، اور اس میں قطر کے مذاکرات کے حوالے سے نہ تو امریکن پینٹاگون کے اندر کوئی اس میں اتفاق رائے ہے، اور نہ ہی پاکستان حکومت اور کرزئی حکومت اس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے جیسے کہ امریکہ چاہتا ہے۔
جی بہت شکریہ، میں وقت رات پھر حاضر ہوں گا۔ قمر آغا صاحب، کیا طالبان اس بات کو مان جائیں گے کہ امریکہ وہاں پر مستقل فوجی اڈہ بنائے رکھے 2014 کے بعد، جبکہ طالبان کی شناختی اس بات پر ہے کہ وہ امریکہ کی موجودگی کے خلاف ہیں؟ اور دوسری بات، کیا امریکہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آبرو مندانہ طریقے سے افغانستان سے نکلنے کا ایک یہی راستہ ہے کہ طالبان کو راضی کیا جائے اور ان کو کسی صورت سے اقتدار میں حصہ داری دلائی جائے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ڈسپریٹلی چاہتے ہیں پاور میں آنا، اس وقت وہ کسی بھی چیز پہ راضی ہو جائیں گے، مگر جہاں تک سوال اس بات کا ہے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے سے آسانی سے نہیں ہٹیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو کسی کے ساتھ پاور شیئر نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے انتہا مذہبی جنونی لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو امریکن ڈیمانڈس ہیں ان کو بالکل نہیں مانتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا خطہ جو ہے उसका पाकिस्तान की आर्मी के साथ बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, वो कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए बगैर उसके उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, खासतौर से कोट क्वेटा शोरा का, और उसके अलावा दूसरी भी अफगानिस्तान में दूसरी जगहें भी हैं। उनको पाकिस्तान ने हमेशा उनको एक स्ट्रेटेजिक असेट की तरह से देखा है और उनका इस्तेमाल किया गया है और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये भी बात सही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशन, खासतौर से पाकिस्तानी आर्मी के रिलेशन बहुत बिगड़ गए हैं और पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है और अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान में क्लैश कर रहा है। तो इस वजह से एक वजह यह भी है बातचीत करने की कि जल्द से जल्द किसी भी सूरत से अफगानिस्तान में ये जो तालिबान है इनको पैसा दे के, वेपन दे के, किसी भी सूरत से इनको पाकिस्तान से अलग कर लिया जाए और इनको अमेरिका तरफ लिया। ये एक बहुत ही बचकानी चाल मुझे अमेरिका की लगती है कि जिसमें कुछ नहीं होगा। इसमें महज मुझे एक ही चीज नजर आती है, खियास एंड अनार्की वहां पे आती हुई नजर आ रही, और कुछ नहीं, आम जनता चाहती नहीं कि तालिबान वापस आए। जिस किस्म का वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, वो 17-18 सेंचुरी की जो वहाबी डॉक्ट्रिन थी उसके ऊपर, अफगान मुस्लिमीन वाली बात में उस पर वो अमल करना चाहते हैं। ये अपने को कहते जरूर हैं देवबंदी, मगर इनका देवबंद से बहुत कम ताल्लुक रह गया है। पिछले 10-15-20 साल से ये लगातार इनको सऊदी मदनी मिल रही थी और इनका जो सिलेबस था मदरसों का वो भी बदल गया था, वहाँ पे वही किताबें थी टेक्स्ट बुक्स की जो कि सऊदी अरेबिया में पढ़ाई जाती हैं। ये इस वक्त सल्फी तहरीक या वहाबी तहरीक के बहुत करीब हो चुके हैं, इनका देवबंद से बहुत कम रिश्ता नजर
आता है। बहुत शुक्रिया आपका कमरा आगा साहब।
इसमें कोई चेंजेस आना बहुत मुश्किल है और आने वाले वक्त में और हालात बिगड़ते हुए दिखते हैं। अमेरिका की एक पॉलिसी ये भी है, बहुत से देशों में ये रही है कि अगर आप उसके साथ नहीं हैं तो फिर आप उसके एनिमी हैं। अगर वो गवर्नमेंट वहाँ पे हटती है या कोई चेंजेस आते हैं तो वो दूसरी तरफ कभी ये कोशिश नहीं करता कि लिबरल इस्लामिक ग्रुप या लिबरल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनको पावर में लाया जाए। उसने हमेशा इस तरह की
बहुत शुक्रिया आपका साथ डील कमर आगा साहब। नवाजिश फारूक खजान साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? बगैर हमारा रब्ता उनसे मुनकता हो चुका। जजी साहब एक मिनट का वक्त बचा है, आप ये बताएं कि इस मरहले में आया तालिबान, सिर्फ 40 सेकंड का हमारे साथी बता रहे हैं वक्त बचा है, कि इस मरहले में तालिबान अमेरिका पर एतमाद करेंगे या पाकिस्तान की फौज और आईएसआई पर?
मेरा ख्याल है ये ओरिजिनली तो तीनों एक ही हैं और ये कभी भी आपस में इनका इत्तेहाद और सुलह हो सकती है, लेकिन इस वक्त इन तीनों में बद एतमादी की फिजा है और एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे।
बहुत शुक्रिया आपका।
और ये कब तक चलता है वी डोंट नो, लेकिन कोशिश हो रही है कि गलत फहमियां दूर हों और पाकिस्तान का अमरीका के साथ एक ताल्लुक रिवाइव हो और इसी हिसाब से फिर तालिबान का ताल्लुक भी पाकिस्तान और अमेरिका के साथ एक बेहतरी की जानिब जाए। लेकिन अवाम का प्रेशर बहुत है, पाकिस्तान के अवाम नाखुश हैं, वो अमेरिका को साम्राज्य समझते हैं, अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं और वहाँ की सियासी कुव्वतें भी अब मजबूर हैं कि वो अमेरिकी साम्राज्य मुर्दाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका लियाकत जैदी साहब। नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा फरमाया अमेरिका की साजिशें और उसके इस तरह के हथकंडे, बहरहाल नतायज क्या होते हैं वो आने वाले वक्त बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।